ओम शांति। कल की मुरली में बाबा ने क्या बनाया हमको? बेफिक्र बादशाह। सहज है काम? बाबा ने तो टाइटल दे दिया, पर क्या काम सहज है? कितने फिकर हैं मनुष्य को। कई बेफिकर होने को लापरवाह होना भी समझ लेते हैं कि पुरुषार्थ की भी फिकर नहीं, मेरे तेरा तू कर मेरे लिए, ये नहीं। निश्चिंत जीवन, व्यर्थ से मुक्त जीवन, इस पे चर्चा करेंगे। बादशाह हैं तो बादशाहों को क्या चाहिए? ताज, तख्त। ताज कौन से हैं? लाइट का ताज, पवित्रता का। बाबा तो उसी पे कल विशेष जोर दे रहे थे। तख्त तीन हैं, कौन कौन से? पहले ब्रकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, सर्वश्रेष्ठ तख्त, तीसरा भविष्य का तख्त। तो जरा पहले विचार कर लें, बाबा का दिल तख्त माना बाबा किसे बहुत पसंद करता है? बाबा के दिल में कौन से बच्चे रहते? वैसे तो बाबा कह देता है सब मेरे दिल में हैं, पर सब तो नहीं होते। कौन दिल पे चढ़े रहते हैं? किन्हें भगवान बहुत लाइक करता है? मुख्य बात तो बाबा की एक ही थी, सूक्ष्म है क्योंकि सब बातें, जिन्होंने अपने दिल में बाबा को बैठाया है। बैठा तो सबने लिया, पर उतर जाता है, उतर जाता है, उतार देते हैं, उतार देते हैं, वो नहीं उतरता। पिछली बार उत्तर था इसका, तुम्हारा दिल बाप का तख्त है। समझ ले इसको, तो किसके तख्त पर बाबा बैठेगा? जिसका दिल स्वच्छ, वृत्तियां साफ, जिसके दिल में व्यर्थ है, जिसके दिल में नफरत है या चिंताएं बहुत हैं, बाबा वहां नहीं बैठता। ये भी तो कहा जाता है, मुरली में भी था, जहां बाप है वहां पाप नहीं, और जहां थोड़ा भी पाप होगा ना, तो सर्वव्यापकता की बात तो वैसे ही खत्म हो गई। सारी दुनिया में पाप ही पाप है, भला भगवान वहां कैसे हो सकता है? पापियों के अंदर कैसे होगा? अब और बातें निकालनी है। बाबा के दिल पे कौन से बच्चे रहते हैं? साकार मुरलियों में बहुत आता है, सर्विसेबल बाबा के दिल पर रहते हैं। था ना दो तीन दिन पहले, बाबा यहाँ बैठता है, कभी याद करता है मेरठ को, कभी देहरादून को, कभी दिल्ली को, जहाँ उनके सर्विसेबल बच्चे हैं। और एक बात ऐसी प्रैक्टिकल, जो बाबा को जितना याद करते हैं बाबा भी उन्हें उतना याद करते हैं, और बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। भाई फोन बंद कर दो। बाबा के दिल पर वे बैठते हैं जो सच्चे होते हैं। ये मुरली में आता रहता है, आज भी तो था, सच्चाई पर, बहुत इम्पोर्टेंट बात। दिल सच्चा, दिल साफ, दिल में गंदगी नहीं, विकार नहीं। और बाबा साकार में कहते थे, जो दूसरों को सुख देते हैं वो बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। प्रैक्टिकल बात है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। लौकिक में भी देखो, सब बच्चे, किसी को चार बच्चे हैं और बहुत प्यार से रहते हों तो माँ बाप को बहुत अच्छे लगेंगे, और वही लड़ते हों तो भले ही वे माँ बाप हैं उन्हें अच्छे तो लगेंगे, लेकिन लड़ने वाले उतने अच्छे तो नहीं लगेंगे। तो बाबा भी कहते जो क्रोध करते हैं, क्रोध पे भी थी ना मुरली एक दो दिन पहले, क्यों भों क्यों करते हो? तो बाबा को वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो शांत हैं, उसकी सेवा में बहुत हैं, ईमानदार हैं, वो बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन हो जाएं, बाबा हमें प्यार करे बहुत, वो हमें चाहे तो बहुत मदद मिलेगी। देखो लौकिक में एक चीज आप ध्यान दें, सब परिवारों में रहने वाले बैठे हैं, आपका कोई बच्चा अच्छा योग्य हो और उसे शुरू से इच्छा हो मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरे पास आई माताएं, दो आई अभी अभी, छोटे बच्चे पहले से ही कहते हैं हमें डॉक्टर बनना है, तो माँ बाप क्या करेंगे? साथ देंगे, और जैसे जैसे उसकी योग्यताओं को देखेंगे कि ये उसके योग्य है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लड़का हो लड़की हो, तो बहुत साथ देंगे ना, प्यार भी बहुत देंगे, उसके मार्ग को भी क्लियर रखेंगे। बाबा के पास भी यही बात है, हम कुछ बनना चाहते हों, हम कुछ करना चाहते हों तो बाबा हमें बहुत मदद करता है। दो सब थे कल बाबा के, संपन्न और संपूर्ण बनो, दूसरी बात था बाप समान संपूर्ण बनो, ये तो बड़ी बात है। खैर अब आ जाएं हम तीव्र पुरुषार्थ, कौन एक सेकंड में बिंदी। अब बिंदी के दो अर्थ हो गए यहां, बाबा ने और मुरलियों में भी विस्तार किया है इसका। एक है संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना, बिंदी लगाना, बहुत संकल्प चलते हों उसी बात से जुड़ी चिंताएं होती हों, व्यर्थ बहुत चलता हो उसको जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप लगाना। कौन लगा सकेंगे? बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है। कौन लगा सकेंगे? जो व्यर्थ से बहुत मुक्त हैं। तो जब थोड़ा बहुत ऐसा वैसा कुछ आएगा तुरंत बंद कर देंगे, और लंबा समय व्यर्थ में रहते हैं तो व्यर्थ उन पर हावी रहता है। अब व्यर्थ की जहां बात आती है, जो बाबा ने कहा व्यर्थ चलता है या चलाते हैं, खुद उसके जिम्मेदार हैं या दूसरे जिम्मेदार हैं, सोचना है खुद जिम्मेदार हैं। जो आत्माएं भाई हो या बहने हो, व्यर्थ सुनने में बहुत रहते हैं, व्यर्थ बातों में रुचि रखते हैं, कहां क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, पास्ट किसका कैसा था, सारी जानकारी रखते हैं। अब जो उन्हें बताएंगे वो सच होगी क्या? सारी आधी झूठ होगी, आधा मिलाएंगे, बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, इनके संकल्प चलेंगे। व्यर्थ जितना सुना जाता है उतना ही व्यर्थ बढ़ता है। कुछ लोगों का व्यर्थ बढ़ता है, बोलो व्यर्थ के कारण निकाल लें जरा, व्यर्थ इच्छाओं के कारण, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो व्यर्थ बढ़ता है। व्यर्थ बढ़ता है दूसरों को देखकर, किसी की गलती देख ली, कमजोरियां देख ली, कल था ना मुरली में अवगुण ना ही देखने हैं, मस्त रहना है। लेकिन किसी की कमजोरी देख ली, कई तो इसी से अपने पूरे जीवन को डिस्टर्ब कर लेते हैं, दूसरों को देखकर ये ऐसा करते हैं, फिर ऊपर शिकायत करेंगे, जब उनकी कोई सुनेगा नहीं फिर बहुत परेशान होंगे, इधर उधर फैलाएंगे, ये ऐसे हैं, कोई नहीं सुनता है। तो व्यर्थ बढ़ जाता है बुराई देखने से। बाबा ने इसके लिए क्या बताया, मान लो बुराई दिखती है, कोई बड़ी बुराई है, तुमने बता दी ऊपर, खत्म हुआ तुम्हारा काम। अब उसको फैलाना, उसको बढ़ाना, उसको इधर उधर करना, इससे सूक्ष्म विकर्म भी बनता है। और सोचो व्यर्थ कैसे चलता है, देहधारियों को देखने से, दैहिक दृष्टि व्यर्थ का बहुत बड़ा कारण है। और सोचो व्यर्थ कैसे चलता है, बोलो, किसी ने कुछ कह दी तो बहुत चलता है। अब वो अच्छी नहीं थी, कई लोग अनुमान से ही बहुत कुछ करते रहते हैं, उसका भी व्यर्थ बहुत चलेगा। तो हमें देखना है व्यर्थ कहाँ चल रहा। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका व्यर्थ बहुत चलता है, कारण उन्हें भी समझ में नहीं आता, ये भी आजकल बहुत हो गया है, कारण समझ में नहीं आता। किसी ने कुछ कहा है, नहीं, कोई समस्या है घर में, नहीं, फिर भी योग में बैठते हैं तो व्यर्थ ही व्यर्थ चलता है। ये कौन सा व्यर्थ है, ये जो बहुत भरा हुआ अपने अंदर, जिसने अपने जीवन को बहुत बाह्य मुक्तता में बिताया है, व्यर्थ में बिताया है, सूक्ष्म पाप कर्म बहुत किए हैं, देखा ऐसा वैसा है, श्रीमत के विरुद्ध सब कर लिया, देखना भी श्रीमत के विरुद्ध तो कर्म भी श्रीमत के विरुद्ध हो गए, तो उनके अंदर बहुत सारा व्यर्थ का भंडार भर गया है, वो चल रहा है अब, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं सदैव बोलता हूं इसमें, डिप्रेशन। आज एक ग्रुप आया, कहीं का था, 7-8 लोग थे, मैंने पूछा कुछ पूछना है, हर एक का डिप्रेशन। मैंने कहा सारे डिप्रेशन वाले इकट्ठे आए हो क्या, कहा उठते ही सोचना शुरू हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता हम क्या सोचते हैं और बहुत सोचते हैं। इस पे जरा ध्यान देना है, इस व्यर्थ को कैसे खत्म किया जा सकता है। बोलो, सबके पास विधि है, बाबा की मुरलियों में रोज हमें ज्ञान का भंडार मिलता है। कैसे इस व्यर्थ को खत्म किया जा सकता है, बाबा का एक महावाक्य मैं सबको याद दिला दूं, सुनना और देखना ये आधार हैं कंप्लेंट करने के या कंप्लीट होने के। बाबा का महावाक्य, सुनना और देखना ये आधार हैं, कंप्लेंट माना शिकायते और कंप्लीट माना संपूर्ण। तो अगर हम व्यर्थ देखते हैं, बुरा निगेटिव देखते हैं तो शिकायते, और अगर हमने आत्मा को देखा, ईश्वरीय ज्ञान सुना, उस पर चिंतन किया, तो ये दोनों चीजें हमें संपूर्णता की ओर ले चलेंगे। बहुत समय से बाबा कहते आ रहे हैं संपन्न बनो और संपूर्ण बनो, लेकिन स्पीड बहुतों की ढीली हो जाती है। खुशी भी इसीलिए नहीं रहती कि व्यर्थ बहुत चलता है। आज बहुत लोग मिलने आए सवेर से नीचे, अलग अलग बातें, दो चार की ये भी बात थी, हमें खुशी ही नहीं रहती, पता नहीं क्यों। लंबे समय से ज्ञान में है, खुशी नहीं रहती। मेरे पास भी इतना समय तो नहीं था कि मैं एक एक से पूछूं भाई क्या कारण है, पर दिखाई देता था व्यर्थ है तो खुशी नहीं है। नहीं तो बाबा की मुरली में कितनी अच्छी अच्छी बातें रोज नशे की आती है ना, साकार मुरलियों में भी बहुत नशे की बातें, उनको अगर हम याद भी करते रहें तो देखिए जो ईश्वरीय नशा है, स्वमान है, इससे एक एक संकल्प से अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। नशा है ना बहुत, कौन पढ़ाता है, कौन मिला है। कल परसों तो कहा था भगवान भी मिला और उसका संपूर्ण ज्ञान भी मिला, छोटी चीज नहीं है। भगवान टीचर बनकर आ जाए, कहीं वर्णन नहीं है। गीता ज्ञान दिया वो भी श्री कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, एक को दिया तो एक को देने से तो टीचर बनता नहीं कोई, सबको दिया, भगवान टीचर बन के आया, सबको ज्ञान दिया, सुप्रीम टीचर। तो इस ज्ञान से हम, इस नशे से हम व्यर्थ को खत्म करें। पर सुनना और देखना, चार लोग बैठ गए, कॉन्फ्रेंस होने लगी, व्यर्थ चलने लगा। हमारे यहां बैठते हैं, मैं पूछा करता हूं आज का टॉपिक क्या है कॉन्फ्रेंस का, भाई हंसने लगते हैं। कॉन्फ्रेंस चलती रहती है, घंटों चलती है, टॉपिक कोई नहीं है, इधर की बात उधर की बात, व्यर्थ बढ़ेगा या समर्थ। इसलिए सुनना कम करना पड़ेगा। जो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ माना बिंदु, आत्मा होना है, शरीरीपन का अभ्यास वही कर सकते हैं जो अंतर्मुखी हो। जो बाह्यमुखी हैं उन्हें तो अभ्यास करना ही भूल जाएगा। देखिए छोटा सा अभ्यास, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इतना केवल, कितना छोटा है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ज्ञान स्पष्ट है। मैं आत्मा हूं भ्रकुटी के मध्य में, ये मेरा शरीर है, लेकिन कितना अभ्यास कर पाते हैं इसका, भूल जाता है ये। शायद सवेरे याद आता हो जब मुरली दोबारा सुनने जाते हैं। तो अगर हम तपस्या नहीं करेंगे, यहां तपस्या का अर्थ है बहुत अभ्यास, इसको इसलिए एक सुंदर शब्द दिया गया साधना, मन को साधना, मन को अपने कंट्रोल में करना, मन को व्यर्थ से मुक्त करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। नहीं तो व्यर्थ बढ़ गए, जिसका व्यर्थ बढ़ गया है अब समय अनुसार डिप्रेशन में आ रहे हैं वो सब लोग, और बहुत लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, ये साफ दिख रहा है। मुझे तो 2015 से ही आभास हो गया था कि संसार डिप्रेशन की ओर बढ़ेगा, हर साल संख्या बढ़ती गई, और पिछले साल तो अमेरिका में WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने बोल दिया था कि 2020 से इस संसार में डिप्रेशन महामारी हो जाएगी। सो दिखाई दे रहा है जो बहुत व्यर्थ में रहे हैं, श्रीमत की अवज्ञा की है, सब डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। अब हमारी बहनें भी डिप्रेशन वालों को बता देती हैं, जो टीचर बहनें यहां बैठी हैं सुन लें, कि योग करो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। डिप्रेशन वाले योग नहीं कर सकते, सिर फटने लगता उनका, तो योग उनका सब्जेक्ट नहीं है। उनको लिखाने हैं स्वमान, उनको चाहिए खुशी, योग नहीं। कोई कहे राजयोग से डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ये राजयोग को भी सरल ढंग से सिखाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन नहीं, किसी बाबा पर एकाग्र हो जाओ वो होगा नहीं डिप्रेशन वालों से। एक ऐसा केस आया अभी शाम को, बिल्कुल मैं आ रहा था नीचे से, कोई बहुत लंबे समय से ज्ञान में डिप्रेशन में आ गई है। अब वो कहते हैं मेरे लिए तुम कुछ करो, उसको किसी ने कहा चलो भाई बहनों से मिला दें बड़ों से, उसने कहा मिलके क्या करूंगी, वो कहेंगे योग करो, मेरे से तो योग होता नहीं। मैंने उसे कहा ले आओ मेरे पास, मैं नहीं कहूंगा कि योग करो, मैं कहूंगा योग न करो अब, लेकिन मुझे यहां आना था तो मिलना संभव नहीं था, क्योंकि डिप्रेशन का पेशेंट योग नहीं कर सकता। ये बात सबको पता होना चाहिए, योग करने के लिए मनुष्य का ब्रेन भी स्ट्रोंग होना चाहिए। कमजोर ब्रेन वाले योग नहीं कर सकते, और व्यर्थ संकल्पों से ब्रेन भी कमजोर हो जाता है। एनर्जी पैदा होती है हर संकल्प से व्यर्थ एनर्जी वो समर्थ एनर्जी को नष्ट करती है। ऐसी आत्माएं योगी नहीं बन सकती। इसलिए सभी अपना अपना प्लान बनाएं कि बाबा जो बार बार कह रहा है, दो चीजों पे ध्यान दिलाया ना, समय और संकल्प, तो हम समय के महत्व को कितना समझते हैं, क्या हम समय को महत्व देते हैं। बाबा ने तो एक लाइन में बोल दिया, संगम युग का समय जन्म जन्म का भाग्य बनाने का समय है। पर और बहुत चीजें, संगम युग का एक एक पल हमें खुशी दे रहा है, हम जो सारे खजाने हैं वो भर सकते हैं प्रति पल। एक एक सेकंड अगर हम सफल करें तो पूरा कल्प सफल कर सकते हैं, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है। हम में से कौन समय को महत्व देता है, अपने से पूछ लें। हमारा समय ऐसे ही जाता है, सवेरे होती है और रात आ जाती है, या रोज हम कुछ प्राप्ति करते हैं सुंदर, हमारा अमृत वेला हमें तृप्त करता है रोज, हमारी दिनचर्या पूर्ण होने पर हमें लगे कि हमने कुछ पाया है आज। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास समय का महत्व नहीं है। हमारा समय केवल लौकिक में बीत रहा है, लौकिक वाले आप सब बैठे हैं, या हमारे जीवन में बैलेंस है। हम ये सोचते हैं, कल भी मैंने कही ये बात, आज ऐसे कई केस आए, विघ्न बहुत हैं। एक बहन जी आई, 3 मास से क्लास नहीं कर रही, बहुत अच्छी बहन, डॉक्टर, 3 मास से क्लास में नहीं आ रही। मैंने कहा क्या हुआ, उसकी टीचर लाई उसको, क्या हुआ, विघ्न बहुत आ गए। तो क्लास छोड़ने से विघ्न दूर हो जाएंगे, मैंने उससे पूछा। क्लास नहीं कर रही, सवेरे सोती हैं देर तक, तो क्या विघ्न दूर हो जाएंगे। कई सोचते हैं बाबा के बने तो विघ्न आ रहे, छोड़ के देख लो। जिसको जन्म जन्म बुलाया, जिससे मिलना चाहते थे, मिलकर छोड़ देते हैं। आज भी था, तुम बुलाते थे पतित पावन आओ, अब आ गया तो सुनते नहीं हो मेरी। बाबा को भी तो कहना पड़ता है ना, अपने बच्चों को प्यार करता है, प्यार से कहता है। तो क्या हम समय को महत्व दे रहे हैं। संकल्प तो बड़ी चीज है, सूक्ष्म चीज है, हमारा एक एक संकल्प हमें एनर्जी देता है। मैंने कभी 74 में सुना था, तब तो बात समझ में नहीं आई थी, अब पूरी समझ में आ गई। संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। मुझे बहुत प्रिय लगी थी, मुझे तब से ही याद है 74 से, लेकिन कैसे है वो डिटेल नहीं पता था। तब संकल्पों पे इतना ज्यादा तो बाबा भी नहीं बोलते थे, धीरे धीरे वो ज्ञान गुह्य होता गया है। तो हम अपने संकल्पों को महत्व देते हैं, चिंतन करेंगे। अब हमें बेफिकर बादशाह बनना है, बनना तो है, चिंताओं का तो संसार में जैसे सागर उमड़ रहा है, परेशानियां बढ़ती जाती हैं, हमें क्या करना है। एक गहरी बात पे ध्यान देंगे, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सभी के कर्मों के हिसाब किताब भी चुकतु होंगे, वो बाहर आ रहे हैं। आज ऐसे कई केस आए जिनमें माताएं खास थी, एक ही भाई था, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। तो हम तो योग सिखाते हैं उन्हें उस तरह से, लेकिन योग कितना लगता है बीमार व्यक्ति का, वो भी तो एक अलग बात है ना। उसके लिए भी तो तन भी तो अच्छा चाहिए। तो हम ध्यान दें, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ध्यान से सुन लेंगे, बहुत चीजों को स्वीकार करके अपने को हल्का करना ही पड़ेगा, चिंतन करना इस बात पे। बच्चों की चिंता होती है, बड़ी नेचुरल बात है, मां बाप को चिंता होती है, लेकिन हम इस चिंता को कैसे खत्म करें। अब ये केस आप सुनो, एक लड़का 28 साल का, इंजीनियरिंग किया लेकिन नौकरी नहीं करना चाहता। मैंने पूछा, उसकी मां थी, क्यों नहीं करता, घर में खेती बहुत है, वो कहता है मैं खेती करूंगा। कितनी है? बहुत ज्यादा है वो तो, मैंने पूछा उससे, 50 एकड़ है। तो मैंने कहा ये उसकी इच्छा है ना, नौकरी में तो अधीनता होती है, छोड़ दो उसको। अब मां बाप को चिंता ये नौकरी करे, अब देखो कितनी बड़ी खेती, उसमें बहुत पैदावार, बहुत कमाई होगी, लेकिन मां को चिंता ये नौकरी करे। बच्चा नहीं करना चाहता तो थोड़ा मां को ही समझदार बनना पड़ेगा या नहीं। तो कुछ चीजों को हम स्वीकार करके अपने को हल्का करें। युवक लोग बहुत सारे बुरे संग में जाते हैं, ये भी कलयुग का प्रभाव है, अंत का, चिंताएं होती हैं। जिसके दो बच्चे बुरे संग में जा रहे हो, वो कहें हम तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, नहीं होता, कहना अलग चीज है, नहीं होगा। तो वाइब्रेशंस देंगे अपने बच्चों को, चिंताएं नहीं, वाइब्रेशंस। दो चीजें माताओं के हाथ में है, एक भोजन। मैं माताओं को बार बार ये बात अच्छी तरह कहता हूं, भोजन बनाते हुए क्या अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस जाएंगे, बहुत कल्याण होगा परिवार का, बहुत ज्यादा, सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि जिन माताओं ने किया है वो मुझे अनुभव सुनाती है कि कैसे हमारे परिवार में सब कुछ ठीक हो गया, बीमारियां ठीक हो गई, शराब पीते थे वो खत्म हो गया, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो गए। लेकिन करना तो स्वयं को पड़ेगा या नहीं, भूल गए तो कैसे काम चलेगा। ये छोटी सी साधना, हर घर में भोजन बनता है, 2-3 बार बनता है, इसको आप प्रैक्टिस में लाओ, देखो आपके घर का माहौल कितना सुंदर होता है। और अगर कोई ज्ञानी अच्छी आत्मा माता बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, मैं परम पवित्र हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, ये संकल्प करते हुए भोजन बनाए, तो उसके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। छोटी चीज नहीं है ये, सभी माताओं को इसका महत्व तो समझ लेना चाहिए। कम समझती है माताएं, मुझे कहना पड़ता है, भूल जाती हैं। जिनके घरों में उनकी बहुएं भोजन बनाती हैं, वो बेचारी बता भी नहीं पाती कि हम तो बहुओं के हाथ का खाते हैं। खाते हैं आप, खाना ही पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष होगा नहीं तो। कई लोग तो, कई माताएं तो स्ट्रांग हैं, वो कन्विंस कर लेती हैं, सबको समझा देती हैं, सब उनके सहयोगी बन जाते हैं, वो भोजन अपना बना लेती हैं। कईयों में वो ताकत नहीं होती, तो वहां बैठकर ये अभ्यास तो किया जा सकता है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं या नहीं। तो भोजन में पवित्र वाइब्रेशंस समा जाएंगे, कुछ चीजों को स्वीकार करके अपने को हल्का करें। बेफिक्र बादशाह वही बन सकते हैं जिसे संगम युग पर बहुत अच्छी प्राप्तियां करनी हो, नशा हो, मुझे ये करना है। और बाबा की एक बात सभी याद रखेंगे, गृहस्थ में रहने वाले, बहुत ही सुंदर बात है वो और सब उसे जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल में लाना है। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, और स्थिति बिगड़ी तो परिस्थितियां विकराल हो जाएंगी। अब बहुतों के साथ ये हो रहा है, परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो वो स्थिति बिगाड़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सवेरे नहीं उठेंगे, मुरली में नहीं आएंगे, क्योंकि परिस्थिति बहुत आ गई है। बाबा कहते थे बीमार भी हो मुरली आकर सुनो पीछे बैठकर। बाबा के शब्द होते थे सो जाओ, सो जाओ माना सिंधी में लेट जाओ, लेट के भी सुन लो। क्यों? ब्लेसिंग मिलेंगी बाबा की, दुआएं मिलेंगी, खुशी मिलेगी, उसे बीमारियां ठीक होंगी। तो बाबा ने तो कितना अच्छा सिखाया, और हम जरा सा कहें आज जुखाम हो गया बाबा क्लास नहीं करेंगे हम, जुखाम ही तो हुआ है, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसी आत्माएं बेफिक्र बादशाह हो सकती हैं? बादशाह माना उदार चित, बड़ा दिल वाले, बहुत बड़े नशे वाले, जिन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जो उसको अच्छी तरह जान गए हैं, वो बेफिक्र बादशाह होंगे। सुना ध्यान से मैंने क्या कहा? जो उसे अच्छी तरह जान चुके हैं, उसे पहचान लिया है कि जहां उसका साथ है वहां कुछ नहीं होगा। बस इसमें एक चीज हमें समझ लेनी होती है कि एक और बाबा का साथ, उसकी मदद, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। दूसरी ओर हर आत्मा का कर्मों का हिसाब किताब। अब एक परिवार में चार बच्चे, माता आई आज, चारों गवर्नमेंट सर्विस का प्रयास कर रहे हैं। कहा होती नहीं गवर्नमेंट सर्विस, मिलती नहीं, तो भाई सबको मिलेगी क्या? सबको मिल जाएगी? इतनी वैकेंसी थोड़ा ही होती है। तो थोड़ा अपने को हल्का करना पड़ेगा। ध्यान दें इस बात पर, एक तरफ भगवान का साथ मिल रहा है, दूसरी तरफ सबका हिसाब किताब भी सामने आ रहा है। अब दोनों में से कौन प्रबल होता है, इस पे सारा खेल है। अगर किसी ने पुण्य किए ही ना हो, किसी का पाप का खाता बढ़ा हुआ हो, फिर वो सोचे कि हर कदम पे सफलता हो जाए, बाबा ये कर दे वो कर दे। बाबा तो करता है, लेकिन वो नीचे तक पहुंचता नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा फिकर बाप को देकर फखुर ले लो। फखुर किसे कहते हैं? नशा ले लो। अब नशे की बात सुनाओ, पांच जो हमें निश्चिंत बनाए। पहला, कौन मुझे साथ दे रहा है? इसको रोज चिंतन में लाना है, कौन मुझे साथ दे रहा है। दूसरा, किसने कहा है बोझ सारे मुझे देकर हल्के हो जाओ? ये हमें नशा हो जाए। कौन कह रहा है मेरेपन को खत्म करके सब कुछ तेरा कर दो? लेकिन मान लो आपको अपने बच्चे की चिंता है, आपका बच्चा बीमार है। अब ये आपको होगा, मेरा बच्चा है, मैं इसका इलाज कराऊं, इस पे खर्च भी होगा, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, हम इसको तेरा कर दिया, तो क्या हम इलाज न कराएं कि बाबा करेगा, सुप्रीम सर्जन है, हमने उसके हवाले कर दिया? हम इलाज कराएं, लेकिन निश्चिंतता पूर्वक कराएं, इस विश्वास के साथ कराएं कि बाबा साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है मेरे को तेरे में बदलना। जिम्मेदारी है आपकी, कोई बड़ी जिम्मेदारी है। अब गृहस्थ वालों की कितनी जिम्मेदारियां होती है, चार बच्चे हैं तो चारों की शादियां करानी है, फिर वो लड़ेंगे भी हिस्सों पर, जो साथी आएगी वो पता नहीं कैसी मिले, वो नाक में दम करेगी या दम निकाल देगी। बहुत झंझट हो रहा आजकल नई शादियों में, 50% फेल हो रहे हैं और इतनी कठिनाई हो रही है कि जीना ही मुश्किल कर दिया। लड़कियां पढ़ी लिखी आती हैं, अनेक बातें हैं उनकी, पहले शादी करने की इच्छा, अब बहुत कितने केस आ गए होंगे दो दिन में, बहुत समस्या हो रही है, क्या करें। 50 लाख मांग रहे हैं लड़की वाले, हम छोड़ देंगे 50 लाख दे दो, इनके पास 5 लाख भी नहीं, जेल में जाओ सब। अब देखो शादी की थी, ये हाल हो रहा आजकल शादियों का। इसलिए बाबा ने क्या कहा, शादी बर्बादी है। आजकल तो सचमुच बर्बादी हो रही है। मुझे तो बड़ा रहम आता है उन माताओं पर, बेचारी इतनी दुखी हो जाती हैं। एक और बच्चों की शादी करानी थी, बहू का मुंह देखना था, कितनी कल्पनाएं की थी, बहू आएगी ये होगा वो होगा, मेरे पांव भी दबाया करेगी, अब गर्दन दबाती है, तो होगा कुछ, मजा आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा समझदार बने सभी माताएं, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित करेंगे, ज्ञान और योग की ओर बहुत ध्यान देंगे, तो कौन हमें साथ दे रहा है उस पर पूरा विश्वास। लेकिन केवल विश्वास नहीं, हम योग युक्त कितने हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हमने आज तक उसके लिए क्या किया है, उसके यज्ञ के लिए क्या किया है, ये भी हिसाब किताब पूरा है, वो हमारे लिए करेगा। परंतु कुछ तो है नियम भी, वही करता रहे और हम कुछ न करें, ऐसा तो नहीं चलेगा, दोनों तरफ से चलता है। लेकिन वो बाप है और सुप्रीम है और बेहद का है, मदद हम सबको करता है, लेकिन रिसीव कौन करेंगे, इम्पोर्टेंट बात यह है, उसकी मदद को ग्रहण करना, उसकी मदद को अनुभव करना, इसके लिए उसे बहुत प्यार बहुत समीपता होनी ही चाहिए। तो हम अब प्रैक्टिकल में कर लेंगे, किसी को कोई भी चिंता सताती हो, कोई जिम्मेदारी का बोझ आपको खुश न रहने देता हो, कैसे करेंगे क्या होगा, ये तो होती है गृहस्थ वालों को चिंता, वो बोझ बाबा को अर्पित करो। मैं जिम्मेदार हूं ये नहीं, क्या बाबा जिम्मेदार है अपने परिवार को, अपने पूरे घर को बाबा का यज्ञ बना दो। ये बहुत पुरानी बाबा की पॉइंट है, आजकल इसे भूल गए हैं सब। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने घर को बाप का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। तो अपने घर को बाबा का यज्ञ बना दो, थोड़ा निकलो उस मेरे से, मेरा परिवार मेरे बच्चों ने ये कर दिया, उसका ये उसका वो, ये नहीं, थोड़ा अपनी स्थिति को इतना सुंदर बनाए कि आपका परिवार बहुत अच्छा रहे। क्योंकि जिसके परिवार अच्छे हैं, मैं तो ये कहता हूं, जिसके परिवार अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, वो इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान है या नहीं। और जिनके बच्चों ने माँ बाप को परेशान किया हुआ है, ऐसों की भी कमी नहीं है। माँ बाप ने बच्चों के लिए जीवन लगा दिया, बच्चे जीवन लेने की तैयारी में हैं, ऐसे में बहुत कठिनाई तो होती है। इसलिए थोड़ा डिटैच होकर मैं कुछ अभ्यास आप सबके सामने रख रहा हूं। मैं इस घर की इष्ट देवी हूं, पहला अभ्यास, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलेंगे चारों ओर। दूसरा, अपने घर में 10-10 मिनट बैठकर 3 बार योग अवश्य करो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ विश्वमान से। कभी बाप दादा का आह्वान करो अपने घर में, कभी मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ इस नशे में बैठो तो शक्तियों की तरंगे पूरे घर में फैल जाएं। आप ये करेंगे तो आपका घर श्रेष्ठ हो जाएगा, तब आप बेफिक्र बादशाह बन पाएंगे। क्योंकि अगर फिक्र बहुत हो, रोज नए नए फिक्र आ रहे हो और कहीं कहे हम तो बेफिक्र बादशाह बनेंगे, वो तो डायरी में लिखा रह जाएगा, फिर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी भाई बहनों, में भाइयों को भी कह रहा हूं, समय दो अपने परिवार के लिए। अब समय क्या देना है, मैंने केवल 3 बार कहा 10-10 मिनट भोजन बनाना और 3 बार ये अभ्यास करना। बहुत थोड़ा समय है ये। अगर मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, देखे आपने अच्छे मुस्लिम्स, 10 मिनट तो उन्हें भी लगती होगी, स्टेशन पे भी, ट्रेन में भी, कहीं भी। दृढ़ता है ना एक, हम सीखें उनसे, हम क्यों ना उनसे ये अच्छी बात सीख लें। तो ये सब करेंगे तो आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, आपके वाइब्रेशंस आपके परिवार को विघ्नों से मुक्त करेंगे, तब आपको जीने का मजा आएगा, तब आपकी सेवा होगी, लोग आपके परिवार को देखेंगे, उन्हें लगेगा देखो ये ज्ञान योग का प्रभाव है इनके जीवन में, इनके परिवार में, ये सबको करना है, तब बेफिक्र बादशाह बनकर रहेंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।